कहते हैं कि बहुत अरसा पहले एक बहुत बड़ा सुल्तान सल्तनत करता था, जिसका नाम सखी मंसूर था। वो अपने अहद का सबसे बड़ा और दौलतमंद सुल्तान था। उसकी ममलकत वसी और शान शौकत का हसीन थी। वो बहुत सखावत करने वाला और काबिल तारीफ आदतों का मालिक था। वो अपनी रिया की हालत से बजाते खुद वाकफ होकर उनकी बेहतरी और बहबूदी में कोशा रहता। एक रोज उसे अपने मुल्क के तूलो अर्ज में सफर करने का इत्तफाक हुआ। वो अपनी रिया के हालात का मुशाहदा करना चाहता था, ताकि मालूम हो कि लोग खुशहाली से जिंदगी बसर कर रहे हैं या किसी बदबख्ती और मुश्किल में मुब्तला है। वो चाहता था कि लोगों की शिकायत सुने और उन्हें जुल्म और सितम से नजात दिलाए। वो आदिल बादशाह था और इंसाफ करते वक्त महज शक्ल सूरत को खातर में नहीं लाता था, बल्कि हमेशा सच्चाई और इंसाफ चाहता था। इस सफर में उसके वजीर, उसकी ममलकत के बड़े बड़े आदमी और उसके मुलाजमीन में से कई लोग इनके हमरा थे। उन्होंने शहर ब शहर सफर करना शुरू किया, यहां तक कि कुछ दूर एक कस्बे में पहुंचे जो सुल्तान की ममलकत का हिस्सा था। जब कस्बे के रहने वालों ने सुल्तान और उसके हमराहियों की आमद की खबर सुनी तो उसके इस्तकबाल को निकले ताकि अपनी अतायद का इजहार करें, चूंकि वो जानते थे कि सुल्तान अपनी रिया की खैर व आफियत दरियाफ्त करने आया है। वो एक छोटे लड़के को उसके हजूर लाए और कहने लगे,
ये क्या है? ये एक यतीम लड़का है। पिछली वबा में इसके वालिदैन का साया इसके सर से उठ गया, अब ये बेयार और मददगार है बादशाह।
सुल्तान का दिल इस बच्चे के लिए रहम से भर गया। हुक्म दिया कि उसे नया लिबास पहनने को दिया जाए, उसे अपने साथ महल में ले गया ताकि वह अपने बेटों की तरह उसकी परवरिश करे। वो लड़का महल में पहुंच गया और सुल्तान ने उस पर नवाजिशों की बारिश शुरू कर दी। जो कुछ उसने मांगा उसे दिया, जैसा वो उसका अपना बेटा था और जैसा उसकी अपनी औलाद को होना चाहिए था। उसने भी अपने अहकाम को बचा लाना और सच्ची मोहब्बत रखना सिखाया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने आका के एहसानों को भुला दिया और अपनी बातनी शरारत को उससे पोशीदा रखा, इसलिए उसका नाम एहसान फरामोश पड़ गया। जैसा कि आपने कहानी शुरू में सुना है, वो फक्त ऐसे मौका के इंतजार में था कि बारगाह सुल्तानी से निकल भागे और हुकूमत को नुकसान पहुंचाए। जब वो अपनी तदबीरों में मशगूल था, दुश्मन खैर नामी एक बदबूदार सुल्तान मंसूर के मुल्क में उसके खिलाफ जंग करने की गरज से घुस आया। वो मंसूर के दुश्मनों में सबसे ज्यादा ताकतवर था और चूंकि उसे एहसान फरामोश की तदबीरों का इल्म था, इसलिए उसने उसे खत भेजा जिसमें उसे तरगीब दी कि मंसूर के लश्कर से जुदा होकर मुझसे आन मिलो, मैं तुम्हें नहायत माकूल तनख्वाह और बुलंद दर्जा दूंगा। खत पढ़ चुकने के बाद इसे रद्द करने और अपने आका को दिखाने के बजाय उसने खुशी के साथ इस तजवीज को कबूल कर लिया। रात होते ही निकल भागा और दुश्मनों की फौजों से जा मिला। जब मंसूर को उसकी गद्दारी का इल्म हुआ तो उसे सख्त सदमा हुआ, लेकिन उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। उसे उम्मीद थी कि जंग के खात्मा से पहले ही दुश्मन की लश्करगाह को छोड़कर वापस लौट आएगा, क्योंकि सुल्तान को अपनी फतह का पूरा यकीन था। वो हरगिज ना चाहता था कि एहसान फरामोश कैद किया जाए, लिहाजा उसने एक नहायत ही मोहब्बत अरमान से भरा खत लिखा, जिसमें उसे लौट आने पर उभारा और लिखा कि अगर वो जंग के खात्मा से पहले वापस आ गया तो उसे मुआफ कर दिया जाएगा। और जिस बड़े जुर्म का वो मुरादत हुआ था अब असद खुश बख्श दिया जाएगा। एहसान फरामोश को इस खत का कोई पास न था, उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर भी मंसूर ने दोबारा कोशिश की और अपनी हुकूमत के पास बड़े बड़े आदमियों को पैगाम देकर भेजा कि उसे वाज़ह नसीहत से वापस आने पर राजी करें, लेकिन ना तो वो नसीहत सुनता था और ना ही वापस आना चाहता था। आखिरकार मंसूर के अजीज बेटे शहजादा हयात ने अपने बाप से कहा, अब्बाजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद रात होते ही एहसान फरामोश के पास जाऊं, वो इसमें जान का खतरा है, लेकिन मैं इसे अपना भाई समझता हूं और उसे प्यार करता हूं। शायद मुझे बजाते खुद आता देखकर वो शर्मिंदा हो और मेरे साथ वापस लौट आए। इसके बाप ने कहा,
जाओ बेटा, लेकिन उसे जरूर बता देना कि अगर अब वो तुम्हारे साथ वापस ना आया तो मैं उसके पास और कासिद नहीं भेजूंगा और ना ही कभी उसे माफ करूंगा। उसे कह देना कि ये आखिरी मौका है।
बस शहजादा रात के वक्त दुश्मन के इलाके की तरफ रवाना हुआ और तन्हाई में एहसान फरामोश से मिला और उसे लाख समझाया कि मैं तुझे प्यार करता हूं और तेरी गैर मौजूदगी मेरे लिए शदीद गम का बायस है, और साथ ही मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वालिद दुश्मन पर फतह पाएगा। तुम्हारा गिरफ्तार होना मुझे अच्छा ना लगेगा क्योंकि तब हम तुम्हें माफ ना कर सकेंगे। उसने उसे वापस लौट आने पर मजबूर करने की लाख कोशिश की ताकि वो उसके वालिद का फरमा बद्दार हो जाए, लेकिन अब एहसान फरामोश का दिल और भी सख्त हो गया और उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। वो दिल में कहने लगा,
मंसूर के सिपाहियों के हाथ में गिरफ्तार होकर भी जाऊं तो उदी बादशाह का दिल रहम और फजल से भर जाएगा और वो मुझे माफ कर देगा और मुझे पुराने वादे फिर से मुझे बहाल कर देगा।
मंसूर और दुश्मन खैर के दरमियान जंग काफी अरसा तक जारी रही और आखिर ऐसा इत्तफाक हुआ कि दुश्मन खैर और उसके साथी मंसूर के सिपाही के हाथ गिरफ्तार हो गए। कैदियों को जिनमें एहसान फरामोश भी था कैद खाने में डाल दिया गया। पेशतर बादशाह के बारे में दूसरा हुक्म ना दे। आखिरकार एहसान फरामोश अपने आका के हजूर पेश किया गया ताकि उसका इंसाफ किया जाए। वो बादशाह से अपने जुर्म का इकरार करके कहने लगा,
अलीजा, अब हक बजानन मैं सजा के लायक हूँ। मैंने जहाँ पनाह से गद्दारी की और हजूर की नसीहतों पर कान ना लगाया, मैं आपके भेजे हुए कई खतूत को कोई अहमियत ना दी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप रहम दिल और शफीक हैं, लिहाजा मुझे माफ कर दीजिए और याद फरमाइए कि दुश्मन की फौजों से मिल जाने से पहले मैंने कई सालों तक जनाब की खिदमत अंजाम दी है। अगर आपकी शफकत का तकाजा नहीं कि मुझे बख्श दिया जाए तो इल्तजा है कि मेरी पुरानी तवील खिदमत के बदले ही मुझे माफ कर दिया जाए।
जब शहजादों ने ये अल्फाज सुने तो उसकी दीदा दलेरी के लिए उसे बुरा भला कहा। सुल्तान ने उसे जवाब दिया,
ऐ एहसान फरामोश, जब मौका हाथ से जाता रहा तब तूने अपने जुर्म का इकरार किया है और इस वक्त तौबा की जब तौबा का कोई फायदा नहीं, फिर तूने ये भी कहा मैं सखी और नरम दिल हूं, ये तो सही है और महेज़ अपनी रहम दिली की वजह से मैं तेरी बगावत को इतने अरसा तक बर्दाश्त करता रहा। मैंने तुझे पैगाम भिजवाए, तूने इनका लिहाज ना किया, यहां तक कि मैंने अपने बेटे को तेरे पास भेजा और तूने उसकी इज्जत का भी कोई ख्याल ना किया, बल्कि दिल ही दिल में बगावत पर अड़ा रहा और बिला वजह मुझसे नफरत करता रहा। अब तू मेरे पास अपनी मर्जी से नहीं बल्कि और हाजतमंद होकर आया है, तौबा तेरे लिए मुमकिन नहीं और ना तू कोई अजरे पेश कर सकता है। जहां तक तेरी खिदमात का ताल्लुक है, तुझे मेरा ममनून और मशकूर होना चाहिए, क्योंकि तू एक यतीम लड़का था, मैंने तुझे अपने महल में पनाह दी और अपने बच्चों के साथ अपने बेटे की तरह परवरिश की। तुझे इनाम मांगने का कोई हक नहीं है गद्दार, और जो कुछ मैंने तेरे साथ किया वो फक्त मेरी शफकत थी, लेकिन अब तू अपनी गद्दारी के बाय सजा के लायक है।
फिर उसने जल्लाद को उसके सर कलम करने का हुक्म दिया और यूं उसकी जिंदगी का अंजाम नहायत ही हसरतनाक हुआ।
आए अजीजो, कहीं ऐसा ना हो कि जो अंजाम एहसान फरामोश का हुआ वही आपका हो। क्या आप नहीं जानते कि खुदा आपको अदम से वजूद में लाया है और उसने अशरफुल मखलूकात का दर्जा आपको बख्शा है ताकि आप उसकी बंदगी करें और उससे मोहब्बत रखें, जैसा कि किताब मुकद्दस अस्तिश्ना 6:5 उसकी 5 शायद में मरकूम है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से परवरदिगार से मोहब्बत रख। वही है जो आए दिन आपकी मदद करता है, आपको जिंदगी और सेहत बख्शता है, गजा और कपड़े और दूसरी जरूरियात की चीजें मुहैया करता है। खुलासा यह है कि मंसूर के एहसान फरामोश के साथ नेक सलूक से कहीं ज्यादा उसने आपके साथ नेकी और मेहरबानी का सलूक किया है। अगर अफसोस आपने क्या किया, अपने दिल में झांक कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप अपने परवरदिगार की शफकत को भूल गए और उसके खिलाफ बगावत इख्तियार की। आप पर यह भी जाहिर होगा कि आप उसके दुश्मन शैतान से जा मिले और गुनाह की खातर तेजी से खींचे चले गए। अपने बातन में निगाह कीजिए और आप जानेंगे कि आप हकीकत में एहसान फरामोश हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा आप पर अपने रहमो करम से बाज नहीं आया। वो आपके गुनाहों को माफ कर देने के लिए तैयार है, जैसे मंसूर ने एहसान फरामोश को तौबा करने की कई बार बुलाया। क्या इसी तरह बारहा परवरदिगार खुदा की आवाज आपको सुनाई नहीं देती? क्या आपको उसकी आवाज अपने जमीर में उसके वफादार खादमुल दीन की जबानी सुनाई नहीं देती? लेकिन अफसोस, इसकी आवाज सुनने और वापस लौट आने की बजाय आपका दिल और भी ज्यादा बागी हो जाता है और आप काम नाफरमानी पर और भी जम जाते हैं। और क्या यह हकीकत नहीं कि आप एक ऐसे शख्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं खुदा और आखिर पर ईमान नहीं रखता? यकीनन आप एहसान परामोश की तरह और अपने दिल को झूठी तसलियां देते हैं और कहते हैं खुदा तो रहीम फरीम है, वो क्यामत के दिन हम पर रहम करेंगे और बाज प्रोस अमाल का जायजा लेने और सजा और जजा के बगैर हमें वारिस जन्नत बना देगा। अफसोस, आप अभी तक घबरा गए और भटक रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं कि खुदा रहीम और करीम है, वो सजा जजा पर भी कादर है? आप क्यों उसकी रहमत ही पर भरोसा करते हैं और सख्त सजा से नहीं डरते? वो किताबे मुकद्दस में फरमाता है, मैं किसी गुनहगार को बेसजा नहीं छोड़ूंगा। इसके बेटे सईदना खुदामंद यसू अल मसीह ने फरमाया, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। याद रखिए, जितना इल्म खुदा की रहमत के बारे में आपको है उतना ही ज्यादा जिम्मेदारी भी आप पर आती है। और अगर आप इससे बागी हैं तो आपकी सजा में और भी इजाफा होगा। एहसान फरामोश को इल्म था कि मंसूर रहीम नरम दिल है, लेकिन महज़ इल्म इसके किसी काम ना आया और यही इसकी तबाही का बाइस हुआ। इसी तरह शैतान भी जानता है कि खुदा रहीम और करीम है, लेकिन महज इल्म इसको बचा ना सका। आए अजीजो, मेरे सवाल पर बुरा ना मानिए, क्योंकि मैं आपकी मदद करने की गरज से पूछ रहा हूं। क्या आप सखी मंसूर की मानंद बनना चाहते हैं या दुश्मन खुदा की तरह? क्या आप शैतान की पैरवी करना चाहते हैं या खुदा की? क्या आप भी क्यामत के दिन खुदा के सामने एहसान फरामोश की तरह फकत झूठे बहाने लेकर हाजिर होने की सोच रहे हैं और फिर भी उम्मीदवार हैं कि आपकी बागियाना जिंदगी के बावजूद भी खुदा आपको जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाएगा? मेरे अजीजो, मैं आपको नसीहत करता हूं कि इस फरसत को गनीमत जानिए, तौबा कीजिए और खुदा की तरफ रजू कीजिए, अपने दिल को कामिल तौर पर उसके हवाले कर दीजिए और इस पर ईमान लाइए, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है और चाहता है कि आप गुनाह की कैद और सजा से छूट जाएं। आया आपको शक है कि वो आपको कबूल करेगा? जरा सोचिए कि वो आपको कितना प्यार करता है
इतने अंबियाए क्राम भेजने के बाद आखिर उसने अपने प्यारे महबूब बेटे सईदना खुदामंद यसु अल मसीह को भेजा कि वो खुद से आपका मेल मिलाप करा दे। अंजील मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। आप नादारों गुमराह हैं और आप पर सजा का हुक्म हो चुका, लेकिन आप ही की जुस्तजू के लिए खुदा ने मसीह को भेजा ताकि आप को खुदा के पास सही सालम लौटा लाए। उसने ना फक मंसूर के बेटे की तरह अपनी जान को खतरे में डाला, बल्कि उसने आपके गुनाहों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उसने मौत को जो आपकी गुनाहों की सजा थी खुद बर्दाश्त किया। पसीब मसीह वही है जिसका जिक्र इस कहानी में मुनजी और शहजादा हयात के नामों से हुआ है। आए अजीजो, ये मोहब्बत कितनी हसीन है और वह दिल जो इस मोहब्बत का एहसास नहीं करता कितना सख्त है। आइए अमन के मुकाम की तरफ लौट आने के इस पर मोहब्बत दावतनामा को हम खुशी और ईमान के साथ कबूल कर। खुदा उन यसु अल मसीह हमें दावत देते हुए फरमाते हैं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई आदमी मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर ये फरमाते हैं, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। काश हम इस नजात को जो खुदा की तरफ से है रद्द ना करें, क्योंकि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना कितना औलनाक है। अरे अजीजो, खुदावंद यसु अल मसीह के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। वही एक है जो आप सबसे कहते के बोझ के तके मादे लोगों सब मेरे पास और मैं तुम्हें आराम दूंगा। अंजील मुकद्दस का एक कॉल है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? इसलिए अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।